जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा गीता जयंती एवं रथ यात्रा महामहोत्सव के दौरान श्रील प्रभुपाद के संघर्ष प्रचार के लिए इस विषय पर 18 दिसंबर 2015 को इस्कॉन लुधियाना में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब जानते हो कि सारे स्वामी भक्तों के शुभ साल ऐसे तो ऐसा हर दिन शुभ है, क्योंकि हम जुड़े हैं की सेवा में। ये साल हम इसका की गोविंद युग में मना रहे हैं। गोविंद युग में मतलब कि 50 साल पूर्व प्रभुपाद चले थे भारत से अमेरिका के लिए। किस कारण? कृष्ण भक्ति की स्थापना और सारे विश्व में इस साल के ऊपर बड़े बड़े उत्सव किए जा रहे हैं। कुछ महीने पहले कैलकुला मंदिर ने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 30,000 लोग आए थे, और उस सम्मेलन में 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टूटे थे। इंग्लैंड में जो विश्व में जो रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं, तो 2 रिकॉर्ड ब्रेक किए थे उस में। तो सारे विश्व में कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है पूरे युग के ऊपर। तो प्रभुपाद जी निकले थे, चले थे कलकत्ता से अगस्त 13 क्यों प्रभुपाद जी गए? क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था एक धार्मिक खानदान में। उनके पिता का नाम था गौर मोहन डे, और गौर मोहन डे मिडिल क्लास कपड़े के व्यापारी थे, तो बड़े सेठ नहीं थे। उनके मन में एक इच्छा थी कि मेरा बेटा राधा रानी जी का बड़ा प्रसिद्ध भक्त है, और गौर मोहन डे को कहला संतों की सेवा करते थे। कोई भी संत आता था जो मांगता था दे देते थे। एक कमरा रखा हुआ था उन्होंने संतों के रहने के लिए। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया और ढोकी को नस भी है, और जो संत घर से जाना होता था गौर मोहन डे उनसे एक ही चीज मांगते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो आनंदी जी का बड़ा प्रसिद्ध धन बने। प्रभुपाद जी की माता की इच्छा थी कि मैं बिना इंग्लैंड जाए इंजीनियर बन रहे, तो पिता की इच्छा थी कि वो भक्त बने, और छोटी उम्र में ही पिता ने उन्हें वृंदावन सिखाया, संस्कृत शिक्षा लेना शुरू किया, और छोटी उम्र में ही प्रभुपाद जी रथ यात्रा की योजना भी कर दे। 6 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा शुरू की बच्चों के लिए कैलकुला में। और ये रथ यात्रा हर साल बड़े होते गए, इतना तक कि प्रभुपाद जी के पिता के मित्र कहते थे गौर मोहन ने तुमने रथ यात्रा की और हमें नहीं बुलाया। और गौर मोहन ने कहते थे ये तो मेरे बेटे ने की थी बच्चों के लिए, रोक रहे थे। तो शुरू से ही ब्राह्मण जी का भाव था भगवान की सेवा। 1921 में ब्राह्मण जी के मित्र थे जिसका नाम था मलिक, नाम भूल गया, तो इस मित्र
नरेंद्र मलिक,
नरेंद्र मलिक। तो नरेंद्र मलिक ने बाबा जी से कहा कि यहाँ एक खास बड़ा प्रसिद्ध संत है, मैं चाहता था मुझसे चल कर मिलो। बाबा जी ने कहा मैं तो कई संतों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, मैं किसी को नहीं मिलना चाहता, क्योंकि बाबा जी के घर में संत आते रहते थे। मित्र ने कहा नहीं, दूसरे संत जैसा नहीं है। और ब्राह्मण जी को ले गए सिद्धांत जी से मिलने को। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण आय, राधा कृष्ण प्रकट है किस रूप में, किस लिए प्रति पतितों का उद्धार करेंगे। हम सब पतित हैं या नहीं, कि हम सोचते हैं सारे पति विदेश में, हम तो ब्राह्मण है। कलयुग में सभी पतित है, अगर कोई सोचे कि नहीं मैं तो ऊंची जाति का हूं तो वो एक गलत भाव है। कलो सुंदर संभव। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे परिषद को उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी आदि पृथ्वी के हर कोने में यह हरि नाम होगा, जितने काम है शहर है सब हरि नाम पहुंचेगा। हमारे आचार्यों ने प्रयास किया था इन भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। उदाहरण के लिए भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद, जो कि महान आचार्य है, ठाकुर भक्ति विनोद जी ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, चैतन्य चंद्र का सार। और उन्होंने वो विदेश की महाविद्यालय को भेजा और 1967 तक कई महाविद्यालय में एक ग्रंथ, और उनके प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत जी ने भी कई सन्यासियों को भेजा पश्चिम देशों में महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने के। पर बिना सफलता के सन्यासी लौट गए। तो जब भक्ति सिद्धांत जी मिले प्रभुपाद जी से, जब प्रभुपाद मिले भक्ति सिद्धांत जी से 1921 में, पहली मुलाकात में ही समझ गए ये है वो युवक जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सफल बनाने कहा कि तो पढ़े लिखे युवक हो, बचपन से ही बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी जब बोलते हो ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को। संदेश बाबा जी उस समय गांधी जी के स्वतंत्रता के आंदोलन के स्टूडेंट लीडर थे। तो बाबा जी ने कहा कि पहले हमें हमारे देश को स्वतंत्र बनाने दो, फिर लोग सुनेंगे हमारे संदेश को। तो बाकी सिद्धार्थ जी ने कहा ऐसी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, नहीं आते ऐसी स्वतंत्रता है क्या 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 जन्म मृत्यु के बंधन से। तो प्रभा जी ने ये आदेश को हृदय में बिठाया और 1921 से ही उनके मन में यह भाव था। प्रभा जी सोचते थे इतने महान संत को मिला पति जी को, उन्होंने मुझे एक आदेश दिया है, इस आदेश को मैं कैसे पूरा करूं, ये था उनका भाव। और भी प्रयास कर रहे हैं। 1944 में प्रभा जी ने एक पत्रिका शुरू की, उसका नाम था बैंक रिकॉर्ड है, और ऐसे ऐसे प्रभा जी ने ग्रंथों का अनुवाद पढ़ाया, क्योंकि 1935 में प्रभा जी मिले थे भक्ति सिद्धांत जी से राधाकुंड में। उस समय भक्ति सिद्धांत जी इस बड़ी योजना यात्रा के साथ ब्रजमंडल कर रहे थे, तो प्रभा जी मिले भक्ति सिद्धांत जी से, उन्होंने एक विनाका की तस्वीर खींची और कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को अनुवाद करना और प्रकाशित करना, प्रकाशित के बाद क्या करते हैं वितरण करना। और इस सेवा को क्या नाम दिया, क्या नाम सब नहीं जानते, आपको बेहद बताना क्यों, बेहद का अर्थ है बड़ा, सबसे बड़ा। साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, पर एक ग्रंथ का लुधियाना में बैठ पाटो उसका अध्ययन इंग्लैंड में भी हो सकता है। हम इतने जोर से मृदंग का बजा सकते हैं लुधियाना में, इसकी आवाज इंग्लैंड तक पहुंचे। तो भक्ति सिन्हा जी ने इस सेवा को बेहद मृदंग का कहा, और प्रभा जी को कहा कि तुम पढ़े लिखे भी हो तो चार। तो प्रभा जी का यही भाव था, इन्होंने 1950 के करीब प्रभा जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और वृंदावन में रह रहे थे दादा दामोदर मंदिर में। प्रभा जी बकायदा दिल्ली आते थे वृंदावन से अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, और प्रभा जी ने संक्षेप में भगवतम प्रथम स्कंध को प्रकाशित किया 3 भागों में। जब प्रभा जी ने भगवतम का प्रथम स्कंध का अनुवाद किया तो उनके मन में ये भाव था, अब मेरे पास ये हथियार है जिसके द्वारा मैं विदेश में प्रचार कर सकता हूँ, अब मुझे विदेश आना है। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कहाँ जाओ, पहले इंग्लैंड जाओ अमेरिका जाओ। ब्रह्मा जी ने निर्णय किया पहले मुझे अमेरिका जाना, पर अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था उन दिनों में, आज भी नहीं है, उन दिनों तो और भी कठिन था। तो प्रभा जी को चाहिए था निमंत्रण वीजा के लिए। प्रभा जी के मित्र थे मथुरा में, इतने गहरे मित्र भी नहीं, जिनके बेटे अमेरिका पढ़ने गए थे और वहां पढ़कर अमेरिकी लड़की से शादी कर ली, वहां से लौट गए। अग्रवाल जी प्रभा को शिकायत कर रहे थे, मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ ही रह गया, मैंने तो उसको अमेरिका में जाना था कि वो वापस आ गया इंडिया, वही रह गया। प्रभा जी ने उसे बड़े हल्के रूप से कहा, आपके बेटे को क्यों नहीं कहते मुझे निमंत्रण दे, इन्विटेशन। तो अग्रवाल ने अपने बेटे को कहा, ऐसी भक्ति स्वामी अमेरिका आना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को प्रचार करने के लिए, बेटा तो उनको एक निमंत्रण दे दो। तो फिर बेटे ने पिता के आदेश के अनुसार निमंत्रण भेजा 3 महीने के अंदर, और 3 महीने के अंदर जब निमंत्रण आया तो अग्रवाल ने कहा पावन से आगे इन्विटेशन मैंने पहुंचा लिया है। प्रभा हैरान हो गए थे, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि अग्रवाल का बेटा इतना परेशान करेगा। तो फिर प्रभा जी के सामने अनेक और समस्या थी। ठीक है, कहा से प्रेरणा कबल के बाद कुछ खास धनी था। जब बाबा बॉम्बे में थे 2 किलोमीटर पैदल जाते थे बस का किराया बचाने के लिए, तो प्रभा जी सोच रहे कैसे जाया जाए। फिर तो पासपोर्ट लिया, फिर एक उन्हें एक आवश्यकता थी पी फॉर्म, पी फॉर्म का मतलब है एक क्लियरेंस देना पड़ता था बैंक से कि शादी का भारत में कोई कर्जा नहीं है। तो जब प्रभा जी गए पी फॉर्म की एप्लीकेशन लेकर, वो स्टेट बैंक के अधिकारी ने कहा स्वामी जी आपको जो निमंत्रण आया है अमेरिका से वो ठीक निमंत्रण नहीं है, हमें आपको वो आप धर्म के विचार ले जा रहे हो, आपको धार्मिक संस्था का निमंत्रण चाहिए, इंडिविजुअल निमंत्रण नहीं। तो प्रभा जी बड़े शोक में आ गए, सब तैयारी हो रही है। तो प्रभा जी ने कहा मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, नाम था मिस्टर राव। तो प्रभा जी ने अपनी फाइल अंदर भिजवाई राव के पास मीटिंग से पहले। जैसे ही प्रभा जी ने प्रवेश किया राव के दफ्तर में, राव ने कहा स्वामी जी डोंट वरी आई हैव डन योर वर्क। फिर प्रभा जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया, 3 महीने का वीजा मेरा पास। फिर समस्या थी कैसे अमेरिका जाया जाए, कैसे मरीज ने 2-3 बिजनेसमैन से कहा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। सबने कहा अमेरिका की प्लेन की टिकट तो बहुत महंगी है। तो फिर किसी ने कहा श्रीमती महाराज जी बड़ी धार्मिक औरत थी, उसके जहाँ पानी की झांसी कंपनी थी, इसका नाम क्या था नेविगेशन, अब तो कंपनी बंद हो गई। और उस श्रीमती महाराज जी ने प्रभा जी का सहयोग दिया था, भगवतों को छापने में दान दिया था। तो प्रभा जी श्रीमती महाराज जी के पास पहुंच गए और श्रीमती महाराज जी ने कहा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग दीजिएगा। श्रीमती महाराज जी ने कहा स्वामी जी आप लगभग 70 साल के हो, कोई जान पहचान नहीं है अमेरिका में, वहां जाके मर जाओगे, आप भारत में रहो, मुझे भगवत का उपदेश दो और भगवत का अनुमान करो। अमेरिका नहीं, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है और हमारे गुरु महाराज का आदेश था, भविष्यवाणी पर सफल बनाना है। तो जब श्रीमती प्राणी ने देखा कि बड़ा दृढ़ भाव है इस साधु में अमेरिका जाने के लिए भगवान के प्रचार के लिए, फिर उसे क्या कहा अच्छा स्वामी जी मैं आपकी मदद करूंगी, पर मैं आपको एक टिकट दूंगी पानी के जहाज में, कार्गो शिप, कई प्रकार के पानी के जहाज होते हैं आज मतलब लग्जरी लाइनर, और कभी बाहर के पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे खान एंड क्रूज, हमारे साथ घूमो और कई कथाकार भारत के कथा भी करते हैं भगवत कथा क्रूज में, नया फैशन निकला भारत में जैसे आगे नया फैशन है भारत में शादियों को हवाई जहाज में कराना, पता नहीं आपने सुनाई कि नहीं, बाहर बॉम्बे वगैरह में कई कंपनियां हैं ये हवाई जहाज में लोग किराए पर लेते हैं 2-3 घंटे के लिए, शादी करवाते हैं हवाई जहाज में। तो ये कार्गो शिप जो है मालगाड़ी, आप कभी मालगाड़ी में यात्रा करते हो, हम एक्सप्रेस गाड़ी में करते हैं ना, तो कार्गो शिप में कोई नहीं जाता, सवारी समान। तो श्रीमद मुरारी ने कहा, स्वामी जी मैं आपको टिकट दूंगी पर कार्गो शिप में। बाबा जी का ठीक है, कार्गो शिप में मैं जाऊंगा। तो कार्गो शिप में जिसका नाम था अगर जलंधर आज होता तो उनके मानी करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि जलंधर का एक टुकड़ा भी इस मांग के किसी बात के पास आता तो जो मांगो देता। और ये जहाज है तो 20-25 साल पहले स्क्रैप उसको तोड़ दिया था, पानी के जहाज हवाई जहाज 20-25 साल बाद तोड़ कर वो बेच देते स्क्रैप के। जरा दूसरा को भी 25 साल पहले स्क्रैप के रूप में तोड़ के बेच दिया था। तो प्रभा जी श्रीमद मुरार जी ने टिकट दी, तो प्रभा जी ने श्रीमद मुरार जी ने टिकट दी जलंधर। पूरे जलंधर जहाज में एक ही कैप्टन था जिसमें किसका नाम लिखा हुआ था ऐसी बात बाकी स्वामी। और जहाज के कैप्टन थे कौन सरपाल। शिवराज जी ने खास प्रबंध किया कि प्रभा की खातिर हो ये चित्र हो। उन्होंने 500 रुपये भी दिए प्रभा जी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए। और प्रभा जी ने क्या करना है और अगस्त 13, 1965 सुबह के 9 बजे प्रभा जी का जला दूधा जहाज चला कहाँ से क्या कर रहा से। आप में से कितने भक्तों ने पानी के जहाज में यात्रा की है? कोई नहीं। तो पानी के जहाज में जब यात्रा करो तो कई बार बहुत उल्टियाँ आती हैं, खास करके अगर अभ्यास नहीं हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं सी सिकनेस। क्या कहते हैं क्योंकि पानी के जहाज में जाना इतना आसान नहीं है, खास करके खरगोश है। आजकल के जो नॉर्ड नए नए शिप्स है वो बहुत हाईटेक है। तो बाबा जी को अगले दिन काफी उल्टियां आई। तो तेरे दिन यात्रा के बाबा जी को 2 हार्ट अटैक हुआ है हल्के। तो जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो बाबा जी ने सोचा कि आज मेरी योजना सफल ही होगी, मुझे अमेरिका पहुंचकर भारत वापस लौट जाना चाहिए। प्रभु जी ऐसे सोच रहे थे। जब प्रभु जी छोटे थे एक जोशी ने उनके हाथ पर देकर कहा, ये व्यक्ति 70 साल के पश्चात सारे विश्व की यात्रा करेगा और सारे विश्व एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें सारे विश्व के लोग रह सके, क्योंकि प्रभा जी ने अंतरिम बनाया। तो फिर अगले दिन रात को प्रभा जी को एक सपना आया जिसमें प्रभा जी के जहाज को एक नाव खींच हुई थी और इस नाव में कौन थे? परम भगवान श्री कृष्ण, सारे देवता। भगवान ने प्रभा जी से कहा, अभय चरण घबराओ मत, तुम्हारी योजना यात्रा अवश्य की सफल होगी, यह तुम्हारा पूरा सहयोग होगा। भगवान ने कहा। तो फिर प्रभा जी पहुंचे बॉस्टन अमेरिका में। अमेरिका बॉस्टन, बॉस्टन पहला शहर था अमेरिका का जहाँ प्रभा जी पहुंचे। जब प्रभा जी बॉस्टन में पहुंचे जो कैप्टन जहाज का कैप्टन था क्या नाम था पांडे, पांडे प्रभा जी को बॉस्टन शहर का दर्शन देने के लिए ले गए। और फिर प्रभा जी ने जब अमेरिका का वातावरण देखा बाबा जी सोचने लगे कौन सुनेगा मेरे संदेश को। बड़ी से जा रहे थे असली संदेश के साथ, उनका कोई भाव नहीं था कि हम संदेश को बदल देंगे लोगों को आकर्षित करने के लिए। कौन सुनेगा इस संदेश को। उन्होंने एक कविता लिखी, प्रांत में उन्होंने कहा राधा रानी जी के सिर कृपा से कोई कार्य भी संभव हो सकता है। और फिर प्रभु जी पहुंचे नीमक में ओगे सत्रह, जैसे प्रभु जी नीमक में पहुंचे सबसे पहली चीज सुने कि वापस जाने का रिजर्वेशन। आए थे 3 महीने की वीजा थी, प्रभु जी ने 2 महीने बाद अपना बुकिंग कर दिया वापस जाने के लिए। और फिर बाबा जी गए, बाबा जी वो अगरवाली का बेटा जो रहता था कौन से शहर में, बटलर, बटलर पेंसिल्वेनिया, वहाँ उन्होंने बंद किया था बाबा जी का स्वागत करने के लिए। और बाबा जी बटलर में आए तो इस लड़के का नाम था गोपाल अग्रवाल, उसकी पत्नी थी अमेरिकन सैली अग्रवाल। बटलर छोटा शहर था और उन दिनों में अमेरिका में बहुत कम भारतीय देखते थे। अभी तो अमेरिका में जाओ हर 10 कदम में आपको कोई भारतीय मिलेगा। अमेरिका के 52 स्टेट्स हैं, उनमें 2 आदमी गवर्नर हैं जो भारतीय देख रहे हैं। तो सैनी अग्रवाल सोच रही थी मेरा छोटा शहर है, उनके घर में मांस बनता था, जब भी प्रभा जी को वहां रहना पड़ा क्योंकि प्रभा जी अमेरिका, और प्रभा जी अमेरिका गए थे केवल 40 रुपए के साथ। कितने रुपए? 40 रुपए। वो दिन 40 रुपए बनते थे $5 के बराबर। और रास्ते में प्रभाजी ने एक भगवान का सेल बेचा कैप्टन पांडे को $20 के। तो प्रभाजी जब अमेरिका पहुंचे उनकी जेब में $20 दे दे एक भगवान सेल बेचा रास्ते में, और $8 में लेकर चले थे भारत। तो प्रभु तो सैली अग्रवाल ने सोचा कि ये छोटा शहर है, सब मुझे फोन करके पूछ रहे ये कौन है, ये स्वामी जी जो आपके घर में आए ना निकले। छोटे शहर में बाहर का एक सन्यासी पहुंच गया तो सब किसी देखे नहीं था कि ये सन्यासी हो। तो सैली अग्रवाल ने प्रभु जी का रहने का प्रमाण YMCA में कर दिया, YMCA उनके घर के पास। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जिसमें रिपोर्टर सब आए प्रभु जी का इंटरव्यू लेने, और एक फोटो भी खींची प्रभु भगवत किताब को पढ़कर। उन्होंने वो एक अखबार है बटलर का, तो बटलर ईगल उस अखबार का नाम था, उसमें एक लेख आया कि भारतीनंद स्वामी बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान जिन्होंने श्रीमद भागवत का अनुवाद किया है हमारे शहर में आए थे थोड़े दिनों के लिए। तो एक कॉलेज प्रोफेसर था जिसने वो आर्टिकल पढ़ा, वो था प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, कॉलेज का नाम था और सुनोगे तो हंसोगे स्लिपरी रॉक कॉलेज। आप समझे स्लिपरी रॉक कॉलेज, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, रॉक मतलब पत्थर कॉलेज, तो फिसलने वाले पत्थर का कॉलेज। तो अनुवाद करो तो उसके एक प्रोफेसर था जिसने ये आर्टिकल पढ़ लिया कि भक्तिनंद स्वामी के बड़े विद्वान हमारे शहर में आए तो उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को फोन करके पूछा, हम आपके स्वामी जी को बुला सकते हैं लेक्चर देने के लिए? जब प्रभुपाद जी को सूचना मिली एक अमेरिकन कॉलेज में को बुला रहा है लेक्चर देने, तो बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे किससे? अमेरिकन लोगों को प्रचार कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपना पहला लेक्चर अमेरिका में दिया इसके प्री आर्ट रॉक कॉलेज में, और लेक्चर के बाद प्रभुपाद जी से एनी क्वेश्चन प्रश्न। तो इस सभा के पश्चात प्रभुपाद जी के मन में ये भाव आ गया, ये मेरे के लोग कृष्ण भक्ति को लेंगे, क्योंकि बड़े प्रभावित हुए थे प्रभुपाद जी प्रश्नों के साथ। फिर प्रभुपाद जी वाले ने छोड़कर आए न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में एक साल के लिए लगभग कोई रहने का ठिकाना नहीं था। एक समय प्रभुपाद जी एक ड्रग एडिक्ट एक आदमी बहुत भंग करा लेता था, उसके घर में निवास कर रहे थे और उन्हें एक सूटकेस लेकर सड़क पे आना पड़ा क्योंकि आदमी नशे में था और मारने का। तो बड़ी कठिनाई के साथ फिर जुलाई 1966 में प्रभुपाद जी ने इस बार की स्थापना की। ये साल हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं प्रभुपाद जी का डिपार्चर, कहाँ भारत कहाँ के लिए प्रभुपाद जी 40 रुपए के साथ निकले थे भारत से, और उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति की स्थापना की, पूरे विश्व का भ्रमण किया, लगभग 80 ग्रंथ का अनुवाद किया। रात को जाकर खुशी होगी कि चैतन्य महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी थी कि क्या थी भविष्यवाणी, क्या थी भूल गए? हाँ, विश्व में जितने नाम है सब जगह क्या है हमेशा पूजा। तो आज प्रभुपाद जी और उनके प्रतिनिधि प्रयास से विश्व के हर कोने में यह हरि नाम पहुंच गया है। और प्रभुपाद जी कृपा से आज इस बार संस्था के ऑफिशियली 602 मंदिर है और सारे विश्व में प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारतवासी भी गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाए, इसलिए प्रभुपाद जी ने विदेश में कैनेडा अमेरिका यूरोप में कृष्ण भक्ति की स्थापना के पश्चात प्रभुपाद जी भारत में लौटे, उनके 100 विदेशी शिष्यों के साथ तो भारत में प्रचार आरंभ किया। और प्रभुपाद जी को दुख होता था यह देखा कि भारतवासी अपनी संस्कृति को त्याग दें। तो प्रभुपाद जी ने पूरे मानव समाज के सुधार के लिए कृष्ण भक्ति की स्थापना की। आज सारे विश्व में प्रभु नाम का जाप ले रहे हैं, गीता इत्यादि पढ़ रहे हैं, यथात उत्सव सारे विश्व में होता है। तो सारे विश्व में लोग कृष्ण भक्ति को ले रहे हैं। कल रात को मैं आपके प्रोग्राम में गया था, वहाँ मुझे आपके एक एक्सपोर्टर मिले जो कह रहे थे मैं तुम्हारे 50 मंदिरों से ज़्यादा विदेश में यात्रा कराया हूँ। आज विश्व के हर कोने में इस संस्था के मंदिर हैं। तो जैसे आप जानते हो कुछ दिनों में आप क्या मनाओगे, क्या इक्कीस तारीख को गीता जयंती हमारे कुरुक्षेत्र धाम में सुना है, बड़ा अच्छा प्रबंध है जिसके विषय में साक्षी गोपाल प्रभु सूचना दे सकते। आपको शरीर भी पता हो कि प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र धाम में एक सुंदर मंदिर बने, आपको पता है? नहीं पता? प्रभुपाद जी गए थे कुरुक्षेत्र 1935 में और स्वर्गीय गुजारीलाल नंदा के साथ, जो इस भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, दो बार होम मिनिस्टर भी थे। उपनंदा जी ने पापा जी को कोई कोई ब्रह्म सरोवर इत्यादि का दर्शन कराया। जाने से पहले पापा जी ज्योतिष गए, जहाँ की भगवान ने उपदेश दिया था। किसका? किसको? पापा जी का इस स्थान में मंदिर बनना चाहिए, कृष्ण अर्जुन, यहाँ के भगवान ने उपदेश दिया था अर्जुन को। बड़ा प्रयास रहा, एक जमीन प्राप्त हुई थी, राजपाल जी भी आए थे भूमि पुस्तक में, काम शुरू ही बनवाना था। जब किसी ने अड़चन डाल दी और 15 साल के खैर साक्षी गोपाल और भक्तों के प्रयास से कई 2-3 साल पहले वो हुड्डा जी की कृपा से कांग्रेस के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें 6 एकड़ जमीन प्राप्त हुई थी, इसकी भूमि पूजा भी हो गई है। ये 6 एकड़ जमीन बहुत अच्छे स्थान पर है, आपके पास और उस साल में भी कृष्णा जी मंदिर बनने जा रहा है। तो गीता का संदेश पूरे मानव समाज के सुधार के लिए, तो गीता में भगवान में क्या उपदेश है? ऐसे तो गीता का संदेश सनातन है, चौथे अध्याय में भगवान हमें उपदेश देते हैं। क्या मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे? सूर्य के देवता। इसे ज्ञान कहाँ पहुंचा? मानव को, मेरे इच्छा को। समय के साथ ज्ञान खो गया था, भगवान ने कहा कि मेरा ज्ञान फिर से दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो? मेरे क्या है? भक्त और मित्र, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकोगे। भगवत गीता यथारूप, कई बार लोग पूछते हैं भारत में भी और विदेश में, यथारूप एज इट इज का क्या अर्थ? प्रभुपाद जी इसकी चर्चा करते हैं भूमिका में। प्रभुपाद जी कहते हैं यथारूप का अर्थ है उपदेश, उसी उपदेश के साथ दिया जा रहा है जिसे भगवान ने दिया अर्जुन ने स्वीकार किया। ये नहीं, ये भगवद गीता है तो हम अपना भाव अर्थ जोड़ सकते हैं। अगर हमने इसका लाभ उठाना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवदगीता यथारूप प्रस्तुत की, आज सारे विश्व में हजारों हजारों गीता के विद्यार्थी हैं, गीता को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गीता में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है गीता में। तो गीता का जो संदेश है सनातन है, माता पढ़ इस ज्ञान से ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, मेरा पता पिता ज्ञान पूरे मानव समाज में सब दुनिया का पिता हूँ। तो गीता का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभा जी ने गांधी जी को एक पत्र डाला और कहा, आप गीता में बड़ा ही बड़ी श्रद्धा प्रकट करते आए हो, गीता की शिक्षा को 5 सालों में सिखाना शुरू करो। तो गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज में, सबसे पहले गीता द्वारा आपको यह पता लगता है कि परम भगवान कौन है। श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं, भगवान का रूप साकार है, रूप है। तो गीता द्वारा ये समझ लिया जा रहा है परम परम भगवान कौन है। शास्त्र में तो कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण के दूसरे अध्याय के द्वारा आपको आत्मा के विषय में ज्ञान मिलता है। एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका के एक बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे, सब बड़े प्रोफेसर बैठे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा उनसे, इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, सर्वसूर्ण है। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। भगवान कहते हैं जैसे कि हम हमारे प्राण वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र स्वीकार करते हैं या आत्मा एक देह को छोड़कर अगला देह स्वीकार करती है, जो निर्णय किया जाता है कैसे कैसे कर्मों के आधार पर। तो न जायते मेरे वाक राचन, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु। ये ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसके नौवें अध्याय में भगवान विषय ज्ञान के विषय में क्या कहते हैं, इस सब ज्ञानों का सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। आप कहोगे हम तो सोच रहे थे आईआईटी का ज्ञान सबसे प्रसिद्ध, ये है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान आपकी आपको संतुष्टता नहीं दे सकता। मछली को अगर आप जल के बाहर रखोगे मछली का जी पाएगी, पर ध्यान करके बिना जीवन अधूरा है। तो इस दिव्य ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।